الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ہی ثلاثن، اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤمن خان. متفق علیہ، یہ بخاری و مسلم دونوں شیخین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ہی ثلاثن، منافق کی تین علامتیں ہیں، یعنی کہ تھری سائنز آف منافق انسان جو ہوتا ہے اس کے بارے میں تین اس کی نشانیاں بتائیں اس حدیث میں، اور کیا تھیں؟ نمبر ایک، نمبر ون، فرسٹ آف آل بولا اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے. نمبر ٹو، دوسری نشانی بتائی، وہ اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اخلف اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اپنے وعدے کو توڑ دیتا ہے یا اس کی اگینسٹ کام کرتا ہے. تھرڈ چیز جو بتائی، وہ اذا اؤمن خان، اور جب اس کے پاس کسی قسم کی کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے. اس حدیث میں ویسے تو بہت زیادہ ہمیں شاید غالباً تنبیہ اور یہ سمجھ آتی ہے، لیکن پہلی سب سے فرسٹ آف آل تو بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے، ایک پہلی بات تو یہ دیکھیں، دوسری کیونکہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، عنما سے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من کنا فیہ کانا منافقا خالصا، کہ جس آدمی میں چار نشانیاں پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور امن کانت فی خصلت منہن، اگر اس میں سے کوئی ایک نشانی اس بندے میں پائی جائے گی تو کانت فی خصلت من النفاق، تو اس میں نفاق کی ایک علامت پائی جائے گی، حتیٰ یدا، یہاں تک کہ وہ اس کو بھی چھوڑ دے، یعنی اف ہی واٹ دس حدیث سیز اس کے اس میں اگر یہ علامتیں پائی گئیں چار، یہاں پہ چار کا ذکر آتا ہے، پہلی حدیث میں تین کا ہمیں ذکر ملا تھا، اس حدیث میں یہ چار میں سے ایک بھی پائی جائے گی تو وہ منافق، اس کے اندر نفاق کی ایک علامت پائی جائے گی، اور یہاں تک کہ وہ اسے بھی چھوڑ دے، یہ فرمایا گیا. اور وہ چار چیزیں یہاں کیا بتائی گئیں؟ تو میں نہ خوانہ، یہ پہلی حدیث میں بھی گزرا تھا، جب وہ امانت رکھی جائے گی کسی چیز کی تو اس میں وہ خیانت کرے گا، وہ حدث کذبہ، یہ بھی پہلے بتائی گئی حدیث میں، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وہ عاہد غدر، یہ تھرڈ چیز اور جو یہاں پہ آ رہی ہے کہ عہد کرے گا تو اس کو توڑ دے گا، تو سم واٹ سملر اس کے وعدے کے خلاف ورزی کی بات ہی چل رہی ہے کہ وہ عہد کرے گا اسے توڑے گا، یا وعدہ کر کے جھوٹ بولے گا یا اس کی خلاف ورزی کرے گا، مور اور لیس کافی سملر بات ہے. بٹ فورتھ چیز یہاں ایک اور بتائی گئی، وہ اذا خاصم فجرا، اور کسی سے جب وہ لڑے گا تو گالیاں دینا شروع کر دے گا، یعنی جسٹ ٹو پروو ہز اون پوائنٹ وہ اس پہ اگریسو ہو جائے گا یا لاؤڈ ہو جائے گا، یا اب بس اپنی بات منوانے کے لیے الٹی سیدھی ظاہر لینگویج کو یوز کرے گا، تو اس سے تو بندہ بحث نہیں کر سکتا، تو وہ اس کام پہ اتر آئے گا. اینی ہاؤ، اب فرسٹ چیز جو یہاں دیکھنے کی ہے، ان دونوں حدیثوں میں کوئی دیکھنے میں وہ نہیں ہے ڈفیکلٹی سمجھنے میں، یہ چاروں چیزیں مور اور لیس بالکل ملتی جلتی ہمیں جو ملتی ہیں نا دونوں حدیثوں سے. تو ظاہر ہے کسی چیز کی بہت ساری علامات ہو سکتی ہیں، اور بعض کو ایک ہونے سے دوسری کی نفی نہیں ہوتی ہے، ایک ہونے سے ڈزنٹ مین کہ ہی ڈزنٹ ہیو، اف سمبڈی ہیز اے سائن ڈزنٹ مین دیٹ ہی ڈز ناٹ ہیو دی ادر سائن، اور وائس ورسا، اگر اس کے اندر ہی ڈزنٹ ہیو دیٹ سائن بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ ہی مے ناٹ ہیو این ادر سائن آف واٹ ایور کریکٹرسٹکس. یہاں پہ کیونکہ نفاق کی بات ہو رہی ہے تو اسی سے متعلق بات کی جائے کرتے ہیں. دوسری چیز ویسے ادھر ایک ہمیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان اس حدیث میں تین نشانیاں بتائیں گے منافق کی، اور اس حدیث کو غور کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی بھی انسان کی دیانت جو ہوتی ہے، اس کی جو سیلف ریسپیکٹ کہہ لیں، یا اس کی جو लोगों के नज़र में उसकी, या नज़र के अलावा भी उसकी जो भी ध्यानत होती है, इंसान का अपना कैरेक्टर होता है, उसका ताल्लुक उसकी तीन तरह की चीज़ों से होता है। फर्स्ट उसका कॉल, यानी कि वो जो बात करता है। सेकंड इज़ फेल, जो वो एक्शंस करता है अपनी बॉडी के थ्रू। और थर्ड इज़ द नियत, जो उसकी इंटेंशन होती है अपने दिल में। इन तीन, ये तीन वो ऐसी चीज़ें हैं, या इंसान बात करे, या कोई उसका एक्शन उस पर उससे सर्टिफाई करे, या उसकी नियत इस तरह की कोई भी वट एवर अमाउंट में हो। तो इन तीन चीज़ों से इंसान की दयानत का, उसके कैरेक्टर का पता चलता है। यहाँ पे पहली चीज़ क्या बताई, इज़ा हद्दसा कज़ाबा, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है। उसकी जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी बात करने की, किसी इंसान की को जज करने के लिए जो मायार, जो स्टैंडर्ड को उसके समझने के लिए, जिस इंसान को कोई पहचानता है, तो उसमें पहली बात क्या है, वो जब वो बात करता है, तो वो बा यहाँ पे फरमाया जब वो बात करता है तो वो झूठ बोलता है। दूसरी चीज़ फरमाई, इज़ात उमिना खाना, तो यानी अब फिर एक्शन का जिक्र आ गया कि जब उसके पास कोई फिज़िकल चीज़ रखी जाती है तो वो उसमें ख़यानत कर देता है। तो अपने एक्शंस के थ्रू, जो उसके पास जो भी किसी जिस फॉर्म में भी अमानत रखी गई, उसने उसमें जब ख़यानत कर दी, तो वो सेकंड फेल के एतबार से, या अपने एक्शंस के एतबार से भी उसमें मुनाफे की निशानी हो गई। और थर्ड चीज़ यहाँ पे फ्राम वज़ा वादा अखलफा, जब उससे वादा, जब वो कोई वादा करता है तो वो उसकी खिलाफ वर्जी करता है। यहाँ पे बात आ गई इंटेंशन की, क्योंकि वादे का ताल्लुक तो इंसान की अपनी इंटेंशन से, उसकी नीयत से है। तो टेक्निकली यहाँ पे उन तीनों चीज़ों को कवर कर लिया गया, एक बात को, किसी इंसान की बात को, उसके एक्शंस को, और उसकी इंटेंशंस को। तो इन तीनों को मिला के, इन तीनों के बारे में एक एक क्वालिटी जिक्र कर दी, कि इन तीनों के अंदर जब भी कोई करप्शन या फसाद पाया जाएगा तो उसके अंदर मुनाफिक की वो निशानी हो जाएगी। और यहाँ वो ज़ाहिर है तीनों को जिक्र किया। दूसरी बात यही है, जाहिर है अगर कोई, इसका मतलब ये हरगिज़ भी नहीं होगा कि उस बंदे के बारे में हम कुछ कह सकें कि ये मुनाफिक है या नहीं है, या आज के ज़माने में इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि पहली बात तो इस हदीस में ही इज़ा का लफ्ज़ आया, इज़ा हद्दसा कज़बा। तो इज़ा को अगर अरबी ज़बान में हम देखते हैं, तो व्हाट इट मीन्स इज़, इसको दवामे इस्तमरार के लिए लाया जाता है। व्हाट इट मीन्स इज़ के अगर इसके अंदर कॉन्टिन्यूटी हो इसी के मामलात में, अगर वो किसी ने गलती से एक मर कभी किसी मजबूरी के तहत, किसी मसलियत की तरह तहत झूठ बोल दिया, या उससे किसी की अमानत में खयानत हो गई अनइंटेंशनली, या उसने एक इंटेंशन की थी, वादा किया था, अब वो उसे तोड़ने पे मजबूर हो गया किसी भी वजह से, फॉर वॉट एवर रीज़न, तो कभी गलती से ऐसा होने से, या किसी वजह से अगर कोई रीजनिंग है, तो इससे वो बंदा मुनाफिक नहीं हो जाएगा। इससे दवाम इस्तमरार मुराद होगा, इजाज़ को लाने का मतलब ये हुआ, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि अगर बार बार वो ये करता है, उसकी एक मामूल, उसका रूटीन ही यही है कि बात बात पे वो झूठ बोलता है, बात बात पे वो वादा खिलाफी करता है, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और जाहिर है एक दूसरी हदीस से भी इस बात का हमें पता चलता है, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अनु से जो एक रिवायत है कि इन्नमल निफ़ाक़ु काना अला अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अम्मल यौम फ़इन्नमा हुवल काफ़िर अव्वल ईमान, रिवाल बुखारी। ये बुखारी शरीफ में हदीस है, इसमें हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अनु फरमा रहे हैं कि के जो निफाक था, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो इट इज़ वाज़ पॉसिबल कि उसे जज किया जा सके, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद थे, और उन्हें वही के ज़रिए भी बताया जा सकता भी था और बताया गया भी था। जैसे हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में फेमस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मुनाफिकीन के बाकायदा नाम बता दिए थे, कि वही के ज़रिए जो इत्तला हुई थी कि ये बंदे मुनाफिक हैं। और यहाँ तक कि व्हेन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु यूज़ टू सी, इवन जब कोई लोग नमाज़ पढ़ रहे हों, कि कोई फौत हो जाए, किसी का जनाजा में अगर ये शरीक ना हो, एंड उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वाज़ यूज़ टू वॉच हिम, कि अगर ये शरीक नहीं है तो वो भी नहीं जाते थे, कि प्रॉबली ही नोज़ हु द मुनाफ़िकीन आर, तो मैं भी कहीं हूँ। और बार बार वो इनसे पूछते थे, कहीं उसमें मेरा नाम तो नहीं है, कहीं उसमें मेरा नाम तो नहीं है, अपने परेशानी के उसमें, क्योंकि उमर रज़ी अल्लाह अनु को भी ये बात नहीं पता थी। बहरहाल तो ये फरमा रहे हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो था, क्योंकि उन्होंने बताया गया था फम्मल यऊ, मगर आजकल के ज़माने में फ़िनमा हुअल काफिर अबिल ईमान, अब आजकल के ज़माने में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जज फॉर अस, वी आर नो बडी टू गिव अ फतवा के ये फ़लाँ आदमी मुनाफिक है, फ़लाँ आदमी मुसलमान है, के या इसके अंदर निफाक की अलामत है या नहीं है, बिकॉज ये फतवा या ये एक बिल्कुल आउट राइट कैटेगोरिक किसी के बारे में एक स्टेटमेंट तो पॉसिबल अब हमारे ज़माने में नहीं रहा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास था। लेकिन यहाँ पे कुछ हमें क्योंकि साइंस बताए गए और उन साइंस के साथ इसी हदीस में जिसका हम कर रहे हैं इसमें तीन साइंस बताए, लेकिन साथ में एक मुस्लिम शरीफ में यही हदीस के साथ एक एडिशन भी साथ में हमें नज़र आता है जहाँ पे ये तक कहा गया वह इंसामा वसल्ला वज़ामा अन्नहु मुस्लिमुन, कि ये बंदा जितनी भी नमाज़ें पढ़ता हो, सजदे करता हो, मसल्ले पे बैठा रहता हो, वंसामा रोज़े रखता हो, रमज़ान के अलग रोज़े रखता हो, फ़राइज़ सारे उसके पूरे रोज़े नमाज़ें हों, और वो सैकड़ों फिर नवाफिल में अपने आप को बिज़ी रखे फॉर वट एवर रीज़न, जैसे आजकल के ज़माने में तो हम ये भी देखते हैं कि डाइटिंग की नीयत से बहुत से लोग रोज़े रख लेते हैं कि चलो यार हमें हमारा वेट लूज़ हो जाएगा या एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और इन रियल जो रोज़े का मकसद होगा वो तो अल्लाह के लिए था, मगर वो उसने अपना उसका मकसद पेट के लिए बना दिया, तो उसकी इंटेंशन में जो उसका नियत था उसमें फतूर आ गया, उसमें फसाद या करप्शन फैल गई उसकी नियत में। इसी तरह वसल्ला वज़ामा अन्नहु मुस्लिमुन, और ये गुमान यही कर रहा है कि मैं नमाज़ें पढ़ रहा हूँ और मैं मुसलमान हूँ, बहुत बड़ा मैं कोई मुसलमान हूँ, मैं तो पूरी पूरी रात तहज्जुदें पढ़ रहा हूँ और मैं फिर फजर के बाद अवाबीन इशराक के नफाफिल और ज़ुहा की नमाज़ें और फिर पूरा वराइज़ नमाज़ें और फिर मगरिब के बाद मैं तो अवाबीन भी पढ़ रहा हूँ, तो मैं तो बहुत ही बड़ा वज़ामा अन्नहु मुस्लिमुन, वो गुमान ये कर रहा है कि मैं तो बहुत बड़ा मुसलमान आया हूँ कोई, लेकिन बात करता है झूठ जब बात में उसकी हो, वादा खिलाफी हो और अमानत में ख़यानत हो, तो वो जितना भी गुमान करता रहेगा वो उसके काम नहीं आएगा। और यही वजह है एक इसकी मिसाल हज़रत एक रिवायत में हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की जो एक रिवायत है उसमें मुस्लिम शरीफ में, उससे पता भी चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ फरमाया मसल मुनाफिकी कशातिल आयरा बैनल गनमैन, इस मुनाफिक को इस बकरी से तशबीह दी, यानी कि सिंबॉलिकली समझाने के लिए कि इस मुनाफिक की मिसाल उस नेकेड नगी बकरी की तरह है हु होप्स एंड विशेस टू गेट कंसीव्ड एंड हैव अ मेल नर, यानी कि बकरा, दैट्स हर विश, एक बकरी हो उसकी ये विश हो कि मुझे एक मेल औलाद हो यानी कि नर बकरा हो, एंड तायर इला हाजी मर्रतन व इला हाजी मर्रतन, और वो दो डिफरेंट रेवर यानी हर्ड्स बकरियों के एट्सेट्रा जो भी होते हैं वो हों, और वो उसमें एक कभी राइट भागती हो, कभी इस रेवर की तरफ, कभी लेफ्ट भागती हो, कभी वेस्टर्न फॉर एग्जांपल आइडियोलॉजी से इम्प्रेस होते हुए उनकी तरफ भागते हों, उनकी फ़िलासफ़ी उनकी थिंकिंग को लेता हो, कभी मुसलमान बनने के लिए फिर मस्जिद में जाता हो, फिर मस्जिद से निकलता हो तो फिर दूसरी तरफ गाने बजाने में म्यूज़िक में लगा रहता हो, या जो भी उसके जो बीच में बैन बैन जिसको अरबी ज़बान में कहते हैं यानी कन्फ्यूज पर्सनैलिटी हो, अब वो कभी इधर भागती है कभी उधर भागती है, तो मुनाफे की मिसाल इस तरह की है, जबकि हमें तो इन अहादीस में क्लियरली बिल्कुल कैटेगोरिकली बताया जाता है कि क्या एक मुसलमान के अमाल होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए। इसीलिए अगर हम गौर करें ओवरऑल पूरी दुनिया में अगर हम इसको एनालाइज़ करें तो मुसलमानों में ख़ास तौर से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो किसी मुसलमान का ईमान का या उसका इस्लाम का मायार क्या होता है, इसे अगर हम डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड करें इन तमाम अहादीस की रोशनी में इनकी इसके प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस पूरी सुन्ना के, तो क्या बनता है कि एक तरफ उसका ईमान अकायद वग़ैरह बनते हैं, फिर उसके ऊपर लाजमी उसके आमाल वग़ैरह भी बनते हैं, और फिर इसको अगर हम इक्वली डिवाइड करें तो पांच चीज़ों में एक मुस्लिम का पूरा जो इस्लाम है वो मुसलमान का होना चाहिए, कंप्राइजेज ऑफ फाइव डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ। व्हाट दोज फाइव एस्पेक्ट्स आर, फर्स्ट नंबर वन उसका अकायद यानी कि उसका बिलीव एक अल्लाह पे होने का यकीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट यानी कि मैसेंजर आखिरी नबी होने का उसके दिल में यकीन, ये सारे यकीन हो। फिर नंबर टू इज़ उसके आमाल, उसकी नमा उसके जो वो नमाज़ें पढ़ रहा है, रोज़े रख रहा है, हज ज़कात जो उसके फ़राइज़ हैं या जो भी वो अपने एक्शंस के थ्रू नेकियां कर रहा है, जितने भी हैं, चाहे वो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, नवाफिल हैं, मसनून हैं, मुस्तहबात हैं, जो भी इबादात हैं वो जो कर रहा है, मंदूबात हैं, इन सब की सब उसके अमाल के ज़रिए जो वो कर रहा है, तो ये उसका सेकंड कैटेगरी बन जाती है उसके ईमान का हिस्से की। और एक फिर एक थर्ड कैटेगरी बनती है उसके मामलात, कि वो लोगों से कैसे मामलात करता है, लेन देन में क्या रख रखाव का किस तरह से अपना ख्याल रखता है, एक दूसरे के किसी के मामलात हुकूक पूरी तरह अदा करता है या नहीं करता है, तो उसका लाइफ स्टाइल जो जिस तरह का है वो देखा जाता है, वो भी इस्लाम का ही हिस्सा हमें इन हदीसों से पता चलता है। फिर एक फोर्थ कैटेगरी हमें इन्हीं हदीसों से किताबुल बुयू में हम देखेंगे इंशाल्लाह, जो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हैं यानी कि मुआशरत है उसकी, वो उसका कारोबार, उसकी जॉब, उसका लेन देन, जैसे कि एक पीछे हदीस में गुजरा भी था कि वो अपने मालिक की इताअत करता हो, कहीं नौकरी तो करता है लेकिन अपनी जॉब के टाइम पे कंप्यूटर पे गेमें खेलता है या व्हाट्सएपिंग कर रहा है, मोबाइल फ़ोन पे लगा हुआ है, फेसबुकिंग कर रहा है, जबकि उसका जो जॉब आर्स है उसमें उसके मालिक ही ओन्स दैट पर्सन, ही डैट दैट्स अ रीज़न ही एम्प्लॉयड दैट पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, मगर वो अपनी जॉब में खयानत कर रहा है और ये भी इसी खयानत के ज़िम्रे में आता है, बट ये उसका तमाम मामलात उसके माशरत के हो गए। फिर एक फोर्थ कैटेगरी हो गई, और इसकी फिफ्थ फिर इसकी कैरेक्टर हो गया, इसके अपने इखलाक कैसा है, ये बात करता है तो झूठ बोलता है, सच बोलता है, या इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक लोगों के साथ डिफरेंट किस तरह से बिहेव करता है, जैसे एक हदीस में गलबन आता है एक रिवायत में कि किसी इंसान को देखना है किस किस्म का इंसान है, तो ये देखा जाए कि अपने घर वालों के साथ कैसा है, क्योंकि बाहर तो लोग दिखाने के लिए तो अपना एक इमेज बनाने के लिए तो कोई भी अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर इंसान अपने घर में ही उसका कैरेक्टर अच्छा ना हो, अपने माँ बाप बीवी बच्चे बहन भाइयों औलाद सबके साथ और नौकरों यहाँ तक के मुलाजमीन भी घर के हों, अगर उसका अपना कैरेक्टर उनके साथ अच्छा नहीं है, तो फिर बाहर वो जितना भी अच्छा अपना इमेज बना के रखे, इट इज़ जस्ट डिसेप्शन, ये तो किसी को डिसीव करने वाली बात होगी। तो इस पांच डिफरेंट कैटेगरीज हैं इंसान के, ईमान है सबसे पहले, उसको हम अलग रखें, फिर उसके जो आमाल हैं नमाज रोज़ा हज ज़कात उसको अलग रखें, फिर उसके माशरत उसका बिज़नेस जो है या उसकी जॉब है या उसमें उसकी सही मायनों में अपना काम पूरा करना और खयानत ना करने का सारा एस्पेक्ट दिमाग में रखें तीसरी जगह पर, और फिर एक फोर्थ उसकी ज़ाहिर कैरेक्टर को देखें, और फिर फिफ्थ उसका लोगों के साथ बिहेवियर जो हम है कैसा है क्या नहीं है, किस तरह के ये डीलिंग्स कैसी करता है पर्सनली अपने लोगों दूसरे लोगों के साथ। अब इन पांच चीज़ों को अगर हम डिफरेंट इक्वली डिवाइड भी करते हैं तो ये 5 times 100 इज़ 20 20 ईच हमें बनता है, 20% ईच के, इसको इस तरह से समझें कि हर मुसलमान का अगर वो उसका ईमान बहुत अच्छा है, मजबूत है, वो पक्का मुसलमान है बिल्कुल यकीन के साथ, तो उसको वो 20% पॉइंट्स उसके मिल जाते हैं। फिर अगर किसी की नमाज़ें रोज़े हज ज़कात उसके आमाल सारे पक्के हैं बिल्कुल एक्यूरेट इस्लाम के मुताबिक हैं सुन्नत के, तो एक ही गेंस अनदर 20%, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये पाँचों में वो डिवाइड अगर हम करते हैं। लेकिन अगर मज़े की बात ये से हमें आज अगर हम एनालाइज करते हैं तो जो हमें बहुत इल्ला माशाल्लाह लेकिन बहुत ही रेयरली, तो ज़ाहिर है एक्सेप्शनल केसेस डेफिनेटली आज भी इस दुनिया में हैं और हर ज़माने में रहेंगे, लेकिन अमूम जनरली अमूमी एतबार से अगर हम देखें सोसाइटी के अंदर, तो बहुत ही बड़ा जो पक्का मुसलमान भी है पूरा उसका हुलिया उसका जो गेटअप है वो बिल्कुल देखने में ऐसे लगेगा इससे बड़ा तो कोई वलीउल्लाह नहीं है, और नमाज़ें रोज़े भी उसकी बहुत पक्के हो सकते हैं, पॉसिबल है बिल्कुल एब्सोल्युटली, पांच वक्त का बानमाज़ी हो, हर साल हज करता हो, उम्रे करता हो, रोज़े रखता हो, पूरा बिल्कुल उसके आमाल सारे के सारे पूरे हों। लेकिन नंबर 3 पे जाते हैं उसके लोगों से मामलात कैसे हैं, तो देखा जाएगा 90% नहीं तो बल्कि 98% मुसलमानों में हालात क्या होंगे, किसी का हुकूक मार रहा होगा, किसी का कोई हक अदा करना है वो अदा नहीं कर रहा होगा, या किसी के साथ जानबूझ के, जैसे क्या है ना वादा अखलफा, वादा किया कि मैं फ़लाँ काम करूँगा फिर उससे मुकर गया या बैक ऑफ हो गया बिला वजह, तो ये एक रेगुलर हमें नज़र आएगा ये। बाकी इसी तरह माशरत में भी लोगों के साथ बिज़नेस करेगा, बिज़नेस में डंडी मारेगा, मिक्सचर करेगा, यहाँ तक कि फॉर एग्जांपल समझने के लिए एक दफ़ा किसी अफ्रीका से किसी पार्टी ने एक इंक्वायरी भेजी कि वी नीड राइस फ्रॉम पाकिस्तान, एंड व्हेन वी फाउंड आउट तो वी सॉ के देर इज़ अ लॉट ऑफ राइस गोइंग अब्रॉड फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान की वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट्स में से है, लेकिन अब जाहिर है और अफ्रीका इज़ वन ऑफ द मेजर मार्केट्स फॉर पाकिस्तानी राइस, तो सीम प्रीटी इंटरेस्टिंग टू गेट इनटू इट एज फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट। तो फिर इसी को देखते हुए इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने जाना हुआ किसी के पास, द फेमस न्यू चाली का एक एरिया है कराची के अंदर, तो वहाँ ही हैड अ फ्रेंड, एन एक्सपर्ट फ्रेंड इन दिस लाइन ऑफ राइस इस फील्ड के अंदर, एंड ही वॉज एन एक्सपोर्टर ऑल ओवर दुनिया में, वो एक्सपोर्ट करता था। तो वी हैड अ सिटिंग एंड जस्ट टू यू नो लिटिल बिट फॉर लिटिल बिट नो हाउ कि किस तरह से बिजनेस होता है या किस तरह से नहीं होता। तो उनसे हमने पूछा कि हमें ये एक्सपोर्ट करना है अफ्रीका, तो ही सेड देखें फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको एक बात बताता हूँ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू बिजनेस इन अफ्रीका। आई वॉज लाइक वाई, तो ही सेड कि देखें द थिंग इज़ कि देर आर मेजर बल्क क्वान्टिटीज ऑफ राइस बींग एक्सपोर्टेड टू अफ्रीका फ्रॉम पाकिस्तान, एंड दैट्स द ट्रूथ। पूरे के पूरे जो बड़े बड़े शिपिंग कंटेनर्स होते हैं, पूरे के पूरे जहाज़ इस काम के लिए जाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ के जो राइस जाता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक एरी एक क्वालिटी होती है जिस सीम्स लाइक स्मॉल टुकड़ा टुकड़ा टाइप, उसको टोटा चावल भी बोला जाता है, इस तरह की वो एक क्वालिटी है जो एक्सपोर्ट होती है। तो व्हाट द एक्सपोर्टर्स डू इज़ के ईदर इन अ 50 kg बैग व्हाट दे डू इज़ दे फिल इन 48 kgs। तो टेक्निकली स्पीकिंग दे ओनली फिल द बैग्स 48 kgs एंड चार्ज द कस्टमर 50 kgs फॉर इट, एंड दे जस्ट सेल इट एट अ ब्रेक इवन कॉस्ट। नाउ लाइक हाउ इज़ दैट पॉसिबल, हाउ कैन वाई दी वाई डू दे वॉन्ट सेल इट एट अ ब्रेक इवन कॉस्ट देन, वाई डू दो नंबर, ये धोखा देने का फ़ायदा क्या है। इज़ लाइक के नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज एवरीबडी इज़ डूइंग इट। तो ये तो एक पूरा सोसाइटी का पूरा माशरे का फॉल्ट है, अगर एक बंदा 50 kg चार्ज करेगा तो उसके बारे में ही नहीं आएगा, ही कैन नॉट डू दैट बिजनेस। ओके द व्हाट्स द अदर पॉसिबिलिटी, ही सेड ओ द अदर पॉसिबिलिटी इज़ यू फिल इन 48 kgs एंड यू कैन फिल इन सम पीपल व्हाट दे डू इज़ के अगर दिखाने के लिए कि इट्स 50 kgs तो उसी 48 kgs में छोटी छोटी कंकरियाँ यानी कि पत्थर या मिट्टी मिला के पार्टिकल्स मिला देते हैं, एंड दे मेक अ 48 kg राइस बैग इंटू अ 50 kg बैग, एंड दैट्स वॉट द रियलिटी इज़। एंड इफ ही डजन डू दैट तो ही कैंट डू बिजनेस इन अफ्रीका एंड कैंट एक्सपोर्ट दैट राइस टू अफ्रीका फ्रॉम पाकिस्तान। बहरहाल तो देखने की खाली यही चीज़ है कि कहने का मकसद यही है, जो बड़े से बड़ा मुसलमान भी होगा आज के ज़माने में तो उसमें इन पांच डिफरेंट उसके जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं इसमें मे बी 20 ईमान उसका पक्का होगा, उसके आमाल बहुत ज़्यादा सॉलिड होंगे। तो लेकिन देन अगेन जब उसको हम काउंटर मेजर करेंगे, उसको हम एक वेइंग स्केल पे रखेंगे, तो ही विल गेट 20% उसके ईमान का, 20% ही मे गेट उसके आमाल का, 40 दैट्स 40%। बट वॉट वट्स की गना डू अबाउट द अदर 60% रिमेनिंग, जो जिसका ताल्लुक उसके मामलात के साथ है, उसके माशरत के साथ है, उसके करेक्टर के साथ है, उन कामों का वो क्या करेगा। उसमें तो वो हर बंदा ही करप्ट है, हर बंदा ही धोखा दे रहा है, हर बंदा ही झूठ बोल रहा है। यहाँ हमारे मुसलमानों में, मुस्लिम वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। अगर वेस्ट पे हम जाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स किसी भी जगह शॉपिंग करने भी जाते हैं, कोई चीज़ हम ख़रीदते हैं बेझिझक बिल्कुल बगैर किसी टेंशन के, किसी वेस्टर्न कोई नॉन मुस्लिम ब्रांड से हमने कुछ ख़रीदा तो हम बिला झिझक ख़रीद लेते हैं कि ओ अगर कोई पसंद नहीं आएगा हम जाके वापस कर देंगे, या इसमें कम से कम तसल्ली होती है कि ये दो नंबरी नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान में हो या और मुस्लिम मेजॉरिटी वर्ल्ड में हो तो कहीं पे तसल्ली नहीं होगी, हर जगह बाज़ारों में कोई बंदा ट्रस्ट नहीं करेगा, या अगर कुछ इन्हें धोखे से बेच देगा तो वापस लेने के लिए अपनी तैयार नहीं होगा चीज़। तो ये तो इतना कॉमन है और ज़ाहिर है हर बंदा इससे वाकिफ़ है, और यही वजह है कि एक हदीस में आता है कि मुसलमान एक ज़माना आएगा, मुसलमान दुनिया में एक भारी मेजॉरिटी कसरत तादाद में होंगे, लेकिन उनकी मिसाल उस झाग की होगी, जैसे जो एक सैलाब के रेला जा रहा होता है उसके ऊपर एक झाग होती है, तो बस वो उस झाग की मिसल होगा। समुंदर में हम देखते हैं कि ऊपर से जो फोम या बबल्स टाइप सॉर्ट ऑफ सिर्फ होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इट्स वैल्यूलेस, लहरें आती हैं उसे फेंक के चली जाती हैं देखने में तो नज़र आता है, बट वो किसी उसके अंदर पावर या कोई ताकत नहीं होती कि वो कुछ भी कर सके। और यही वजह मुसलमानों की है, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन जो हमें मुसलमान मिलता भी है तो वो 40-50% ही उसका इस्लाम, बाकी है बाकी अपने मामलात में, माशरत में और अखलाकियात में, सब में बिल्कुल कोई किसी किस्म का उसका इंटरेस्ट ही नज़र नहीं आता। बहरहाल अल्लाह हमें मुनाफिकीन की इन अलामतों से अपनी हिफाजत में रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और महफूज फरमाए, और हमें सही मायनों में मुसलमान बनने का और मोमिन बनने का मौका अता फरमाए और तौफीक अता फरमाए, और हमें इन मुनाफिकीन की जो अलामात इस हदीस में ख़ास तौर से बताई गई, झूठ बोलने से, वादा खिलाफ़ी से, अमानत में किसी की खयानत करने से दूर रखे और महफूज रखे। सुबहानकल्लाहुम्मा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।